श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 20 श्लोक संख्या 35 डेट 25 मार्च 2015 स्वीकार कमल वचन प्रभु।
अपना तेज यथा जिस प्रकार त्यक्ते क्षणा समस्त इच्छाओं का परित्याग करने परित्याग करने वाले शांताः शांत मुनयः मुनिगण मुक्त किल्बिषा बुरी लालसाओं से युक्त। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, बादल अपना सर्वस्व त्याग कर शुद्ध तेज से अपनी तरह चमकने लगे, जिस तरह शांत मुनिगण अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं त्यागने पर पापपूर्ण लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य, जब बादल जल से पूरित होता है तो वे श्याम रंग से हो जाता है और सूर्य की किरणों को ढक लेता है। जिस तरह शुद्ध मनुष्य की का भौतिक मन भीतर चमकने वाली आत्मा को ढक लेता है, किंतु जब बादल अपना जल बरसकर सफ़ेद बढ़ जाता है तब वे चमकीली सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिस तरह की भौतिक इच्छाओं तथा पापपूर्ण लालसाओं को त्याग देने वाला व्यक्ति शुद्ध बन जाता है और जब वह अपनी आत्मा तथा अंतस्थ परमात्मा को अच्छी तरह प्रतिबिंबित करता है। ओम अज्ञातविरांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ये श्लोक में जैसे मुनयोः मुक्तकिल्बिषाः मुनि गणों का विषय में चर्चा की जा रही है, किस प्रकार शरद ऋतु आने पर, शरद ऋतु आने से क्या होता है उसका वर्णन हो रहा है। बारिश के मौसम के बाद शरद ऋतु आते हैं, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु। तो वर्षा ऋतु में सारे बादल अपने जल से भरा हुआ जो बादल हैं, जल प्रदान करने के बाद वो सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। सर्वस्वम जलदाहित्वा, सर्वस्वम जलदाहित्वा, जलदाहित्वा, जलदा का अर्थ है बादल, हित्वा मतलब त्याग करना या देना। तो क्या होता है, विरेजहु शुभ्र वर्चसः, विरेजहु शुभ्र वर्चसः, शुभ्र करते शुद्ध सफ़ेद रंग को प्राप्त करते हैं। और ध्यान से देखेंगे ये जो बादल का रंग होता है एक चांदी के जैसा, चांदी का रंग होता है उस प्रकार का रंग होता है। विरेज हो और चमकने लगे, जब चांदी को आप अगर लाइट के अंदर डालेंगे, उसके पीछे लाइट डालेंगे तो क्या होगा, चमकना शुरू करता है। और वर्चसः इतना तेज प्रकट होता है वो बादल से, यथा जिस प्रकार तेक्त्वेषणा शांता, तेक्त्वेषणा शांता, जैसे एक मुनि मुक्तकिल्बिषा अपने सारे कलमशों को त्याग करके एकदम शांत ध्यान में बैठा हुआ जो मुनि है उसके बराबर ये बादल दिखाई पड़ते हैं। आइए इन श्लोकों में प्रकृति को देखे, वृंदावन की प्रकृति को देखे, सिद्धांत की प्रकाश हो रहा है। वैसे शास्त्रों में एक शैली है जिसका, शास्त्रों को प्रस्तुत करने की एक शैली है जिसको काव्य कहा जाता है। काव्यों में अनेकों उपमा, उपमेय, उदाहरण के द्वारा एक गहरा तत्व को समझाया जाता है। और कैसे समझाया जाता है, बड़े प्रेम से समझाया जाता है। वेदों में वेदों की उक्ति जो है वो बहुत कठोर होता है, वेद जो है प्रेम से नहीं बोलता है। जैसे एक मालिक नौकर को बोलता है, कठोर शब्दों से बोलता है, ये करो बस, आगे पीछे पूछो मत। हाँ, वचन भी उससे कठोर होते हैं, जैसे करना है तो करना है, इसी प्रकार करो, इसका कोई प्रस्तुतिकरण में प्रेम नहीं होता है। तो वही वेदों की प्रस्तुतिकरण सबको जमता नहीं है, क्योंकि अनेकों लोग बद्ध सत्व रजस तमा इन तीनों गुणों के अंदर बद्ध होने की वजह से, सात्विक व्यक्ति वेदों को उक्ति सुन लेता है, डायरेक्टली सुन लेता है, समझ लेता है, कर लेता है, क्योंकि सात्विक व्यक्ति भावुक नहीं होता है। ये भावुकता होती है रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो रजोगुण से जो बद्ध व्यक्ति हैं उनको कठोर शब्दों में अगर बोलोगे तो उनको दिल में चोट लगता है, दिल में दुख लगता है। सात्विक व्यक्ति को दिल में कुछ दुख नहीं लगता है, क्योंकि सत्वगुण ज्ञान में स्थित हैं, सत्वम संजायते ज्ञानम। ये रजोगुण जो है सारे जो भौतिक इमोशंस का कारण होता है, इसलिए वैसे रजोगुणी व्यक्ति को समझाने के लिए कुछ और तरीका इस्तेमाल करते हैं शास्त्र। क्या है वो, पुराण। पुराणों की उक्ति जो है किस प्रकार है, जिस प्रकार एक मित्र दूसरा मित्र को समझाता है, मित्र दूसरे मित्र को कठोर शब्दों में नहीं समझाता है, मित्रता की भाव से कहता है, तब वो मित्र समझ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं मित्रता की भावना से कहने के बाद भी नहीं समझते हैं, तो इसलिए शास्त्र में काव्यों का वर्णन किया गया है। वही जो सिद्धांत जो वेदों में वर्णन है उसी को काव्यिक रूप में, काव्यों में ज़्यादा अलंकार होता है तो अलंकार शास्त्र का ज़्यादा उपयोग होता है, ज़्यादा उपमा उपमेय रहता है, उनके द्वारा उसी बात को समझाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी श्लोक के अनुसार देखेंगे, आत्मा परमात्मा का दर्शन कैसे व्यक्ति कर सकता है, जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण तरीके से हृदय शुद्ध हो जाए तब तक आत्मा और परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, वेदों में कहा गया है। यो पश्यति वीत शोकाः, पश्यति वीत शोका, वेद का उक्ति है, ये उपनिषद का उक्ति है, यो पश्यति वीत शोकाः, कौन देख सकता है कि भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को कौन देख सकता है, एको बहुनाम वो विदधाति कामाम, तो सारे लोगों की कामना पूर्ण करने वाला वो परमात्मा किसको कौन दे सकता है, पश्यति वित शोका। ये वेदों की युक्ति है। लेकिन उसी जब पुराण में आता है, पुराण में एक स्टोरी वर्णन होगा किस प्रकार जब तक हम अपने सारे कलमशों को दूर करेंगे नहीं तब तक हम इसको देख नहीं सकते, थोड़ी सी भाषा की शैली अलग होता है। वही काव्य जो है वो कुछ अलग प्रकार होगा। देखो वातावरण देखो कितना सुंदर है, अभी बादल छा गए, बादल छा के पूरा बारिश बरसने लगे, तो लोगों का मन जो है वो पूरा जो कहने वाला जो है वक्ता जो है उसके प्रवचन में लग जाता है और धीरे धीरे से लेके उस पॉइंट तक लेके आता है। बारिश का मौसम समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, सारा जो बादल हैं वो उसका जल समाप्त होने के बाद वो सफ़ेद रंग का हो गया। किस प्रकार हुआ मालूम है? वो इस प्रकार हुआ जिस प्रकार एक ऋषि एक मुनि ध्यान करते अपने सारे कलमश को दूर करके शांति से जो बैठा है, तो बात वही है लेकिन उसको प्रस्तुत करने की शैली है। खास करके ये जो अध्याय हैं ये भागवत परे पुराणिक शैली है लेकिन ये काव्य है, काव्य की शैली है। काव्य में ज़्यादा प्रकृति का वर्णन होता है। बड़ा अद्भुत चीज़ देखिए, प्रकृति का वर्णन करते हुए बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत के रत्नों को प्रकाशित किया जा रहा है। आप पिछले श्लोक में देखेंगे चार वर्णों के या चार आश्रमों की बात हो रही है। चार आश्रम में जो लोग हैं उसका उनको दुख को कैसे व्यक्ति मिटा सकता है। बारिश का मौसम से समाप्त हुआ, अभी शरद ऋतु आया। शरद ऋतु आने का अर्थ क्या है? भक्ति का उदय होना। तो भक्ति का जैसे उदय हुआ, ये चार वर्ण और आश्रम के जो लोग हैं अपने आश्रमों की कर्तव्यों से उत्पन्न हुआ दुख को वो शांत कर लिए। यानी दूसरे शब्दों में ये वर्णाश्रम धर्म जो है कर्तव्य मात्र के लिए है। हमारा कर्तव्य है तो करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ आनंद निकलता है, कुछ आनंद मिलता है। भौतिक कार्य में कोई आनंद नहीं है लेकिन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि करना पड़ता है, क्योंकि वैसी जिम्मेदारी हम ले चुके हैं इससे करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी को कर्तव्य है, वो कर्तव्य करना चाहिए उनको, क्योंकि वो कर्तव्य किए बिना वो शुद्ध नहीं होता है। लेकिन साथ साथ में ये जो कर्तव्य जो है वो आध्यात्मिकता के साथ कोई संबंध नहीं, वो भौतिक है। तो ये कर्तव्यों को करते करते अनेकों अनेकों दुखों को अनुभव करता है। लेकिन जैसे भक्ति का उदय होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक है उन कर्तव्यों से करने के समय उत्पन्न हुआ दुख जो है वो शांत हो जाता है, दूसरा जो है वो कर्तव्य से परे हो जाता है। कर्तव्य से परे होना का अर्थ क्या है? उनको वो कर्तव्य करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। जैसे भगवता है भगवान कहते हैं कि यस्यात् प्रतिवस्यत आत्मतृप्तस्य मानवः तस्य कार्यम न विद्यते। उनके लिए कोई कार्य की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यस्यात् प्रतिवस्यत, वो भगवत भक्ति में ही आनंद लेता है, इसके वजह से उनको ये वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे उदाहरण दिया गया है पिछले श्लोक में, अगर आपको याद होगा चार बातों को बताया गया है कि ये ऑटम सीजन यानी शरद ऋतु जो है, ये सारे जितने भी बादल है खास करके जो घना बादल होता है उसको शीतल सुंदर हवा के द्वारा उसको ढकेल दिया, जिसके द्वारा ब्रह्मचारी का जीवन को सूचित किया जा रहा है। ब्रह्मचारी अपने कर्तव्यों को करते करते गुरु के आश्रम में अनेकों अनेकों कर्तव्यों को करते करते दुखों को अनुभव कर रहा है। तो लेकिन भक्ति का उदय होने से तो क्या हुआ, ये बड़े आनंद से वही कर्तव्य को करने लगा, या दूसरे शब्दों में वो कर्तव्य से परे भी हो गया है। अभी इधर एक सूक्ष्म विचार की बात है। विचार ये है, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं कृष्ण भक्ति को स्वीकार करूं तो मेरे सारे कर्तव्य मेरे सारे ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये सही बात है, शास्त्र में कहा गया है त्यक्त्वा स्वधर्माम चरणामुजं हरे भजन नपक्वो पते ततो यदि यत्र क्वाबाब्धर अभूत अमुष्य किम अमुष्य किम को अर्ताप तो भजताम स्वधर्मतः। और देवऋषि भूतात्मानिनां पितृणां किं करो नायं मृणी चराजन सर्वात्मने शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परित्यक्तम्। हाँ, सारे जितने भी कर्तव्य हैं सारे ऋण हैं उनसे मुक्त हो जाता है। कौन? जो सर्वात्मन है, शरणम शरण्यम गुतम कुंदम, सारे पूर्ण तरीके से भगवान का शरण लिया है, वो सारे कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। उनको कोई कर्तव्य की बात, कर्तव्य का कोई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आस्थिता जनकादय, जनक महाराज, जनक महाराज कौन है? वो साक्षात भगवान रामचंद्र के वो ससुर है, जिन रामचंद्र स्वयं उनसे भिक्षा मांगने आए, कन्यादान, कन्यादान किया रामचंद्र को। वैसे जनक महाराज को उदाहरण देते हुए भगवान ने कहा कि भले ही वो कर्तव्यों से परे है लेकिन फिर उन्हें सारे कर्तव्यों को किया। तो अगर कृष्ण भक्ति के बिना अगर कोई भौतिक कर्तव्यों को निभाना चाहता है या कर रहा है या भौतिक कर्तव्य करता है, ना कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा ना कर्तव्य पूरा होगा। इसलिए आजकल की भौतिक जगत में देखिए, लोगों को बोलेंगे आप कृष्ण भक्ति में आओ, कृष्ण का नाम जप करो, तुरंत क्या बोलेंगे, हमारा बहुत सारा जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आप उनके घर में जा के देखो क्या हो रहा है, झगड़ा ही हो रहा है, कोई जिम्मेदारी कोई नहीं निभा रहा है, केवल एक दूसरे झगड़ा मात्र कर रहे हैं। तो लेकिन जब वो कृष्ण भक्ति के बारे में कहो, बोलते बहुत जिम्मेदारी है प्रभु जी, घर संभालो, बाद में आऊँ, बाद में भक्ति, बस रिटायर हो जाऊँगा, बाद में आपके साथ ही घूमूंगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, भले वो काम कर रहा है लेकिन आर्थिक समस्या है, भले ही परिवार को देखभाल कर रहे हैं परिवार में झगड़ा हो रहा है, किसी के बीच में संबंध बराबर नहीं, एक दूसरे बात भी बातचीत ही बराबर नहीं करते, ये क्यों है, इसका कारण क्या है? कृष्ण भक्ति नहीं करोगे ना भौतिक मिलेगा ना आध्यात्मिक मिलेगा, ये निश्चित बात है। अगर कृष्ण भक्ति करोगे तो भौतिक भी मिलेगा आध्यात्मिक भी मिलेगा। तो कर्तव्य पारायण तभी व्यक्ति हो सकता है जब कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हुए कर्तव्य करे, जैसे जनक महाराज। जनक महाराज अपने सारे कर्तव्यों को अच्छी तरह से कर रहे थे और भगवान की भक्ति में भी तल्लीन थे। तभी दो प्रकार के लोग हमको प्राप्त होते हैं। भगवद्गीता में इन तीसरे अध्याय की श्लोकों की व्याख्या करते हुए श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु इस बात को कहते हैं, कुछ लोग होते हैं परिनिष्ठा, कुछ लोग होते हैं सनिष्ठा। ये जो परिनिष्ठा भक्त होते हैं वो कैसे हैं, वो एकदम बिल्कुल भक्ति भी करते हैं और साथ साथ में वर्णाश्रम धर्म को भी पालन करते हैं। तो भक्ति के साथ साथ जब वर्णाश्रम धर्म को पालन किया जाता है तो क्या होगा, वर्णाश्रम धर्म के पालन में जो कर्तव्य से उत्पन्न हुआ दुख है उसका प्रभाव नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए एक घर में एक गृहिणी है, अब घर में इतना सारा काम संभालना, वो करना, पति को देखभाल करना, बच्चों को देखभाल करना, घर साफ करना, और इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं किया, बोलते निंदा भी करते, सब कुछ कर रही है, ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं कर रही है, तो क्या होगा, एक ना एक दिन जो है उनके मन में ऐसी बात आएगा, मैं इतना कर रही हूँ कोई पूछता नहीं, क्या फायदा, सबको छोड़ो ना, जो बम्बई भाषा में बोलते ना कंटाल, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति करती हैं तो अपना कर्तव्य भी कर सकती हैं और कर्तव्य से उत्पन्न कोई कुछ भी कह ले, उनको मालूम है ये तो मेरा कर्तव्य रूप में कर रहे हो, जो कुछ अच्छा बोले बुरा बोले, उनका ही अच्छा है उनका ही बुरा है, लेकिन मेरा काम मैं करते रहूँगी और भक्ति करते रहूँगी। तो ये दोनों भौतिक भी हैं आध्यात्मिक भी दोनों हो सकता है। अगर आध्यात्मिकता नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए पिछले श्लोक में ये जो बादलों को दूर करने की बात जब हुई शरद ऋतु के आगमन के ऊपर, तो उस समय उसके ऊपर टीका करते हैं श्री विश्वनाथ जी के ठाकुर, कहते हैं कि ये ब्रह्मचारी के लिए हैं। ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहते हुए अगर उसका उद्देश्य कृष्ण भक्ति रहता है, कृष्ण को प्राप्ति का विचार रहता है, तो वो बाथरूम साफ करे या किसी का शारीरिक सेवा करे, किसी का कपड़ा धोए या गुरु का बिना कारण का डांट भी खाए, उसको दुख नहीं लगता है। बिना कारण का गुरु से डांट खाना बहुत दुख की बात है, कि वो सोचता है कि मैं तो घर बार छोड़ के आया हूँ, सब उनके भरोसे इतना सेवा करता हूँ लेकिन फिर भी डांट खाने को मिलता है, ये भावना कभी नहीं आएगा। कब? जो उसके मन में बात रहती है मेरा जीवन कृष्ण के लिए है, तो वो अपना गुरु का सेवा कर्तव्य भी करता रहता है और साथ साथ में क्या करता है, वो भक्ति को भी करता है। इसे भक्ति का उदय होने से ये वर्ण और आश्रम धर्म से उत्पन्न हुआ जो दुख है, वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों से उत्पन्न हुआ दुख है, वो मिट जाता है। और दूसरा बात यह है, वो कर्तव्य से परे भी हो जाता है, कर्तव्य से परे होने पर भी करता रहता है लेकिन निश्चित रूप में वो दुख नहीं आता है। तो दूसरी बात हो रहा है इधर, जैसे पिछले श्लोक में आपने कल इसको सीखा होगा कि क्या हुआ, जैसे बादल वो ढल गए शरद ऋतु के आने पर, तो सारे प्राणी कहाँ थे, सब अपने अपने शेड में थे, क्योंकि बारिश के मौसम में घूमने नहीं जा सकता है, हाँ गाय जो है बाहर चरने नहीं जाते हैं, या कुछ अन्य जो प्राणियाँ जो निम्न स्तर के जो लोग हैं वो भेड़ बकरी को पालने वाले हैं वो भी अंदर ही रखते हैं भेड़ बकरी को, बाहर नहीं छोड़ते। तो जैसे बादल ढल गए तो क्या हुआ, सारे भेड़ बकरी सारे जितने भी जानवर जो हैं वो सब बाहर निकले आनंद में, गाय चरने के लिए घूमने के लिए बाहर निकले। तो इसका तुलना किया गया है गृहस्थ का, गृहस्थ जो है उसका जीवन किस प्रकार रहता है, वो बारिश के मौसम में जानवरों का जीवन होता है ना उस प्रकार रहता है, वो घर में बंधन में रहता है, वो एकदम बिल्कुल वो नहीं जा सकता बाहर, ये काम खत्म हुआ दूसरा खड़ा रहता है, दूसरा काम खत्म हुआ तीसरा खड़ा रहता है, तो तीसरा खत्म होते ही पांच काम सामने रहता है, वो सोचता है कब छूटे यही सोचता रहता है, लेकिन छूटता नहीं है। लेकिन जैसे कृष्ण भक्ति का उदय होता है हृदय में, तुरंत जिस प्रकार जानवर बारिश का मौसम ढलने के पर सारे जितने भी जानवर एकदम बिल्कुल खुले हम भागते हैं, ये तो इधर का उदाहरण दिया गया, लेकिन हमारे लिए और एक उदाहरण है। जैसे आप जानते हो स्कूल का बेल बजता है तो जैसे बच्चे बाहर निकलते हैं ना कैसे निकलते हैं, आप ध्यान से सुना, हम भी तो ऐसे ही भागे, जैसे बेल बजते ही बस भागो स्कूल के बाहर, कितना आनंद का अनुभव होता है सर बच्चे को, है कि नहीं। उसी प्रकार ये भक्ति का और घंटी हृदय बजते ही गृहस्थ जो है घर से बाहर निकलते, चलो बहुत हो गया अभी तो इसका वर्णन हुआ है, क्योंकि एक गृहस्थ का जो जीवन है एक प्रेशर कुकर के जैसा है, अंदर प्रेशर बना हुआ है और बाहर भी नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जैसे थोड़ी सी भक्ति उदय हुई हृदय में, भक्ति उदय होने से क्या हुआ, तो उनको एक प्रकार का छूट मिलता है। ये दूसरा उदाहरण दिया गया है, जैसे एक जानवर अपने बंधन से अपने शेड से बाहर जाते हैं बादल ढलने पर, और भक्ति का उदय होने पर गृहस्थ जो है अपना। अभी तीसरा बात क्या हुआ कि वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का जीवन में तपस्या ज़्यादा रहती है। तो तपस्या कैसा करता है वानप्रस्थ, अपना शरीर के ऊपर मिट्टी डालता है, मिट्टी डाल के तपस्या करता है। तो जब कोई तपस्या ताप को अनुभव कर रहा है, वो ताप को शमन करने के लिए शरीर के ऊपर मिट्टी डाला जाता है। ऐसे बड़े कठोर योग पद्धतियों में इसका वर्णन हुआ है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण के रूप में कहा गया है, जो वानप्रस्थ जीवन तपस्या के लिए बनी है। तपस्या साधारण चीज़ नहीं है, तपस्या में बहुत दुख लगता है। तो इधर जैसे शरद ऋतु प्रकट हुआ, प्रकट होने के मात्र क्या हुआ, ये मिट्टी जो है वो शुद्ध हो गया। अभी बारिश के मौसम में मिट्टी कचरा हो जाता है कि नहीं, लेकिन जैसे शरद ऋतु आया और तुरंत मिट्टी जो है बहुत शुद्ध हो जाता है। इसकी वजह से जिस प्रकार मिट्टी डालने से शरीर का ताप जो है कम होता है, उसी प्रकार ये जो वानप्रस्थ का जो तपस्या है, वो तपस्या से उत्पन्न हुआ दुख जो है वो शांत हो जाता है। कब शांत होता है, जब भक्ति का उदय हृदय में होता है। जैसे भक्ति का उदय होता है हृदय में, तो वो तब वानप्रस्थ का जो तपस्या से उत्पन्न हुआ जो ताप है वो शांत होता है। अभी कल हमने इस बात को चर्चा किया। और चौथी चीज क्या है, संन्यास। तो सन्यासी का कैसे हुआ, वो है जल में जैसे बारिश के मौसम में क्या होता है, नदियों में तालाब में जल भी कचरे से भर जाता है, क्योंकि शहर में हो गांव में हो हर जगह बारिश गिरता है, तो बारिश का सारा पानी कहाँ जाता है, उस तालाब में या नदी में जाता है, वो शहर में गांव के सारे कचरे को लेके जाता है कि नहीं। तब जैसे शरद ऋतु आया, बारिश का मौसम समाप्त हुआ, तो क्या होगा, ये पूरा जल जो है एकदम बिल्कुल शीतल हो जाता है, और सारा सुंदर पुष्पों के द्वारा सुसज्जित हो जाता है। शरद ऋतु में पुष्प एकदम बिल्कुल विकसित होने शुरू करते हैं, और जितना भी कचरा था वो सब से जल साफ हो जाता है। उसी प्रकार सन्यासी के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या है, सबसे बड़ा समस्या है काम है, क्रोध इत्यादि चीज़ें। ये काम क्रोध इत्यादि चीज़ों से वो शुद्ध हो जाता है। भक्ति का उदय होते ही सन्यासी इन सब चीज़ों से शुद्ध हो जाता है और भगवान के ऊपर ध्यान करने में उसको आसानी होती है। यानी सन्यास आश्रम का दुख हो, कहाँ से दुख होता है सन्यास आश्रम का? काम क्रोध की वजह से दुख होता है। और वानप्रस्थ का दुख क्यों है? तपस्या से उत्पन्न हुआ दुख है। गृहस्थ का दुख क्या है? समस्या, ये पारिवारिक समस्या होती है वो दुख है। ब्रह्मचारी का दुख क्या है? नम्रता से गुरु का सेवा में करते रहना और सेवा करने के बाद भी गुरु का डांट खाना, वो भी दुख है। ये चार आश्रम में चारों दुख है। कभी कभी गृहस्थ कहते हैं, प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे हो, ब्रह्मचारी हो, मुक्त जीव हो, शांति से भजन कर रहे हो आप, आपको कोई दुख नहीं, देखो हमारा बहुत दुख है। ऐसा नहीं कि हर आश्रम में अपना अपना दुख रहता है, अपना अपना समस्या रहता है। आप ये मत सोचो संन्यास आश्रम में कोई समस्या नहीं है, आप ये मत सोचो कि गृहस्थ आश्रम में कोई समस्या नहीं है। कुछ ब्रह्मचारी सोचते हैं कितने अच्छे, देखो गृहस्थ शांति से भजन कर रहे हैं, उनसे जाके पूछो पता लगेगा क्या समस्या है। तो हर आश्रम में अपनी अपनी समस्या है, लेकिन भक्ति का उदय होने से तो क्या होगा, ये सब शांत हो जाएगा। ये पिछले श्लोक का पूरा सार है। लेकिन आज के श्लोक में ये चारों वर्ण आश्रम में नहीं आते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सब छोड़ छाड़ दिए और सन्यासी भी नहीं है। वो कौन है? मुनिगण है। मुनयो मुक्त किल्बिषाः, ये मुनिगण जो है वो अवधूत के स्तर में रहते हैं। उनको ना सन्यास धर्म से, ना गृहस्थ धर्म से, ना वानप्रस्थ धर्म से, ना कोई ब्रह्मचारी धर्म से लेना देना है। वैसे मुनियों का वर्णन हो रहा है जो जंगल में निवास करते हैं और तपस्या कर रहे हैं। और उनका वर्णन किस तरीके से हुआ है? सर्वम जलदा हित्वा। इनका वर्णन किस प्रकार हुआ है? उनका मन किस प्रकार हो जाता है? जलदा, ऐसे बादल के बराबर हो जाता है जो सारे जल को उन्होंने त्याग कर दिया है। और मुनि का मन भक्ति का उदय होने से एकदम बिल्कुल प्रज्वलित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। किस प्रकार होता है? जैसे सफेद बादल के पीछे जब सूर्य रहता है, यानी दूसरे शब्दों में हमारी आंख और सूर्य के बीच में जब ये सफेद बादल आता है ना, तब बिल्कुल चमकता, आप देखने लायक दृश्य है। उसी प्रकार ये मुनि का जो मन है वो प्रज्वलित हो जाता है, क्योंकि मुनि जो है ध्यान में बैठा हुआ है, उनका ध्यान भगवान में पूर्ण तरीके से केंद्रित होने से, तो बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए उनके शरीर से बिल्कुल एक ऐसा तेज प्रकट होता है जिस प्रकार चांदी का तेज हो, जिस प्रकार एक बादल का तेज हो। अभी इस श्लोक की तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है कि जब तक हृदय में ये हृदय का कलमश दूर नहीं होता है, तब तक हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा का प्रकाश नहीं होता है। तो हम सब जानते हैं ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान जो है हृदय में प्रकाश होने वाला चीज़ है। यस्या देवे परा भक्तिरिता देवे तथागुरो तस्या कतियायते ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, प्रकाशन्ते महात्मना। दिव्य ज्ञान जो है हमारे हृदय में प्रकाश होने वाली चीज़ है। वो कैसे प्रकाश होगा, कब प्रकाश होगा? जब भक्ति का उदय होगा। जब तक भक्ति का उदय नहीं होगा तब तक दिव्य ज्ञान जो है हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। तो ये मुनि का उदाहरण दिया गया है। अनेकों अनेकों जगह भगवद गीता में, भागवतम में ये मुनि का वर्णन किया है, स्थितधीर मुनिरुच्यते। इसका मुनि का मन जो है तभी स्थित होता है जब वो सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभ जय आज, सारे जो सुख और दुख को समान दृष्टिकोण से देखता है। तो ये समान दृष्टिकोण से देखना कभी संभव है? जब हृदय में भक्ति का प्रकाश हो। तो इधर दो चीज़ों को कहा गया है। एक क्या है? शांता मुनयो मुक्त किल्बिषाः, शांता मुनयो मुक्त किल्बिषाः, मुक्त किल्बिषाः शांता, ये दो शब्द है। शांता का अर्थ क्या है? कामनाओं से मुक्त हो जाना, तभी इसको शांति कहा जाता है। वैसे साधारण लोग सोचते हैं जब मेरी कामना पूरा हो जाए तो मुझे शांति मिलेगी, लेकिन एक ठीक विपरीत बात है। जब कामना पूर्ण होने से शांति नहीं मिलती, कामना से मुक्त होने से शांति मिलती है। मान लो कि एक बच्चा जो है वो चाहिए चाहिए करके बहुत हल्ला कर रहा है, उसके अंदर बहुत कामना, एक गुड़िया चाहिए या कोई खिलौना चाहिए, खिलौना के लिए बहुत रो रहा है, तो माँ सोचती है चलो उसको दे के शांत कर देते हो, हाँ। लेकिन ये गलत विचार है, खाली उसको देने से वो शांत नहीं होता है, शांति उससे नहीं मिलती है। जब उसके मन में जो इच्छाओं को पूरा जब तक नहीं जाएगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। अंततः लोग सोचते हैं, भौतिकवादियों के मन में ऐसी बात रहती है कि अगर मुझे मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, वो नहीं होगा। इसलिए शांता का अर्थ है कि सारे जितने भी कामनाओं से दूर हो गया। मुनयो मुक्त किलबिषा, किलबिषा का अर्थ है कि दुष्ट विचार। दुष्ट विचार का शुरुआत किससे होता है? सारे दुष्ट विचार का स्रोत है ईर्ष्या। अभी देखिए कामना और ईर्ष्या में अंतर क्या है। कामना ये है कि मुझे चाहिए, ईर्ष्या वो है उसके पास क्यों है। दोनों में सरल अंतर है। आपके पास नहीं है आप रो रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके पास है करके क्यों रो रहे हो आप? तो ये इसको ईर्ष्या कहा जाता है। मान लो कि एक व्यक्ति के पास पैसा आ गया, उसको देख के हमको दुख अनुभव होना, ये सारे दुष्ट विचार का ये स्रोत है। जो कामना जो है रावण का प्रतीक है, और ये जो ईर्ष्या जो है किलबिष मन्यु, ये जो है वो दुर्योधन का प्रतीक है। तो रामायण और महाभारत ये दो चीज़ों की रचना व्यासदेव और वाल्मीकि ने इसीलिए किया है। किसके लिए किया? ताकि हमारे हृदय में जो कामना दूर होने के लिए, कामना को नाश करने के लिए रामायण प्रकट हुआ। जिस प्रकार राम ने रावण को वध किया जो कामना का प्रतीक था, उसी प्रकार वाल्मीकि ने रामायण को रचना करके हमारे रामायण के द्वारा हमारे हृदय में जो कामनाओं को नाश कर सकते। तो व्यासदेव ने क्या किया, हमारे हृदय में जो मन्यु है यानी ईर्ष्या जो है, जो किलबिष है, सारे दुष्ट विचार का जो मूल है उसको नाश करता है। तो जैसे अभी हमने कहा रामायण और महाभारत की, रामायण महाभारत जो है वो इतिहास है, वो काव्य है। तो ये काव्यों के रूप में प्रस्तुत करके भगवत भक्ति को, जैसे बच्चे को दवाई दिया जाता है, उसी प्रकार व्यास और वाल्मीकि ने ये दो महान ग्रंथों के द्वारा कठोर दवाई है, लेकिन जिस प्रकार कड़वा दवाई बच्चे को मिठाई के साथ मिला के दिया जाता है, उसी प्रकार व्यास और वाल्मीकि ने ये जो दो ग्रंथों की रचना करके सारे लोगों की जीवन में भक्ति का जागृत किया, जिसके द्वारा मुनयः मुक्त किलबिषा ये हो सकता है। इससे शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, गीता भागवत को पढ़ना चाहिए, रामायण महाभारत को पढ़ना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे हृदय में ये भक्ति जागृत हो, और भक्ति के शक्ति के द्वारा ये सारे जो बातें इधर कहा गया है, खास करके चार वर्ण आश्रम से उत्पन्न दुख की शांति, और सारे जितने भी प्रकार के जो कलमश है उसकी भी इलाज जो है वो इन ग्रंथों से हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? चंद्रा श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।